ग्यारहवां चैप्टर इतिहास का स्वरूप विवेचन। एक विषय के रूप में इतिहास का अध्ययन कुछ मूलभूत प्रश्नों पर विचार की अपेक्षा रखता है और इन प्रश्नों के उत्तर ही अध्येता की इतिहास विषयक अवधारणा का निर्धारण करते हैं। क्या अतीत का यथातथ निरूपण संभव है? क्या कभी भी इसका विस्मरण हो सकता है? क्या इतिहास एक स्वतंत्र विषय है, इतिहास विज्ञान है अथवा कला? इतिहास का अर्थ कहाँ निहित है और इसे कैसे ढूंढा जा सकता है? हमारे लिए इतिहास का क्या मूल्य है? इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय समय पर अनेक इतिहासकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लियोनार्ड एम मार्जक ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी 1970 में कई प्रसिद्ध विद्वानों के लेखों का संपादन कर इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। प्रस्तुत अध्याय में मार्जक की इसी पुस्तक का समीक्षात्मक सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। मार्जक की पुस्तक के 5 विभाजन हैं। प्रथम विभाजन मानव स्वरूप तथा इतिहास का अध्ययन के अंतर्गत बेनेडेत्तो क्रोचे, जोसे आर्तेगा ई गेसे तथा आर कालिंगवुड, इन 3 विद्वानों के लेख संकलित हैं, तथा दूसरे विभाजन ऐतिहासिक अन्वेषण की विधाएं में एलन वुलक, हेनरी पाइरेन, कार्ल वेकर तथा इसाइया वर्लिन द्वारा रचित वार लेख संकलित है। तीसरे तथा चौथे विभाजन में इतिहास का अर्थ प्रथम तथा इतिहास का अर्थ द्वितीय में जी डब्ल्यू एफ हेगेल, इसाइया वर्लिन, ई एच कार, राइन होल्ड नेबूर, आर्नोल्ड टाइनवी तथा पीटर गिल द्वारा लिखे गए लेख हैं। जबकि नैतिकता तथा इतिहास शीर्षक वाले 5वें विभाजन में कार्ल आर पापर, इसाइया बर्लिन तथा जेके वर्कहार्ट के लेखों को स्थान दिया गया है। प्रत्येक विभाजन के प्रारंभ में मार्जक ने संक्षिप्त भूमिका दी है, जो उनके अनुसार इतिहास दर्शन के विषय में मेरे अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला, मानव स्वरूप तथा इतिहास का अध्ययन। इस विभाजन की अपनी भूमिका में मार्जक ने इन लेखों की पृष्ठभूमि में इतिहास के स्वरूप की संक्षिप्त चर्चा की है। इतिहास, जैसा कि क्रोचे का आग्रह है, केवल इतिवृत्ति नहीं है तथा विशुद्ध इतिहास के लिए यह एक अनिवार्य अपेक्षा है कि उसकी वर्तमान कालिक उपयोगिता हो। इतिहास हमें स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ऐतिहासिक अध्ययन वस्तुतः आत्मगवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगत आत्मबोध की सहायता से मनुष्य अपने वर्तमान कालिक जीवन को सुचारू रूपेण नियंत्रित कर सकता है। वर्तमान अतीत से सर्वथा भिन्न नहीं है। वर्तमान अतीत से सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि अतीत का भार जाने अथवा अनजाने सदैव ही हमारे साथ होता है। कालिंगवुड के अनुसार इतिहास को वस्तुतः एक चिंतन विधा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। सभी इतिहास विचार का इतिहास है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि प्रत्येक विचार स्वरूपतः ऐतिहासिक होता है। साथ ही इतिहास एक आत्मशासित शिक्षण शाखा है, जिसकी अपनी विशिष्ट प्रकार की ज्ञान मीमांसीय समस्याएं होती है। इतिहास तथा इतिवृत्त, बेनेडेत्तो क्रोचे। क्रोचे इटली में उत्पन्न हुआ था। इतिहास के सिद्धांत के ऊपर इस इतालवी विद्वान ने अपना प्रथम लेख 1893 में लिखा, जब इसकी आयु केवल 27 वर्ष थी, किंतु इस आयु में ही उसकी प्रतिष्ठा एक कुशल इतिहासकार के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इस लेख का शीर्षक था इतिहास का कला की अवधारणा के अंतर्गत प्रतिष्ठापन। इस लेख के प्रकाशन के पूर्व इस समस्या पर विशेष रूपेण जर्मनी में विचार किया जा चुका था कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला, एवं अधिकांशतः उत्तर इसे विज्ञान मानने के पक्ष में थे। क्रोचे ने इस लेख में पहले कला की अवधारणा को स्पष्ट किया और फिर यह आग्रह किया कि वस्तुतः इतिहास कला है, किंतु एक विशेष प्रकार की कला। कलाकार के समान इतिहासकार भी देखी हुई बात का विवेचन करता है किंतु इससे आगे बढ़कर इतिहासकार स्वयं को यह विश्वास भी दिलाता है कि जो वह देख रहा है वह सच है। इतिहास इसका सिद्धांत तथा व्यवहार क्रोचे की प्रमुख कृति है। क्रोचे के इतिहास दर्शन को कुछ विद्वान आदर्शवादी इतिहास दर्शन की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि उसकी प्रमुख कृति में हीगल तथा अंग्रेज आदर्शवादियों जैसे बोसांके तथा ब्रेडले के सिद्धांतों के साथ पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। उदाहरणार्थ क्रोचे के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक घटनाओं को एक विकासशील प्रक्रिया के अंग के रूप में ही समझा जा सकता है तथा यह कि कोई भी घटना तभी समझी जा सकती है जबकि संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लिया जाए। हीगल के द्वंद्ववाद के भी उदाहरण इसी कृति में प्राप्त हैं। क्रोचे ने विज्ञान तथा दर्शन दोनों के विरोध में इतिहास की स्वायत्तता पर बल दिया, जिसे उसके अनुसार उसे अपना दायित्व निर्वाह अपने विशेष ढंग में करने का अधिकार है। इतिहासवाद अर्थात इतिहास का शास्त्र उसके अनुसार इस तथ्य का स्वीकरण है कि जीवन तथा यथार्थ इतिहास से अभिन्न है। इसका आशय यह है कि घटनाएं तथा विचार सभी इतिहास प्रवाह के अंग हैं। प्रस्तुत लेख की प्रमुख विषय वस्तु यह है कि वर्तमानकालीन जीवन से संबंध होने के कारण इतिहास सदैव समसामयिक होता है एवं समसामयिकता की यह विशिष्टता ही उसे इतिवृत्त से पृथक करती है। समसामयिक इतिहास परिभाषा। समसामयिक इतिहास को अनति दूर अतीत के रूप में देखे जाने वाले कालांतराल का इतिहास कहा जा सकता है। यह कालांतराल पिछले 50 वर्षों, एक दशक, एक वर्ष, एक मास, एक दिन अथवा पिछले एक घंटे अथवा एक क्षण का भी हो सकता है, किंतु उपयुक्तता केवल उसी इतिहास को समसामयिक शब्द से विशेषित किया जा सकता है जो विवेचनीय कार्य के तुरंत पश्चात अस्तित्व में आए तथा जिसमें उस कार्य की चेतना विद्यमान हो। इसके विपरीत अतीतकालिक इतिहास वह है जो पहले से ही स्थित इतिहास के संदर्भ में उपस्थित होता है और इस प्रकार उस इतिहास की समीक्षा के रूप में अस्तित्व में आता है, चाहे वह इतिहास 1000 वर्ष पुराना हो अथवा केवल एक घंटा पुराना हो। किंतु निकट से देखने पर यह इतिहास भी, जिसे हम असमसामयिक अथवा अतीतकालिक कहते हैं, यदि वस्तुतः यह शुद्ध अर्थ में इतिहास है तो समसामयिक होता है तथा इस प्रकार तथा कथित समसामयिक इतिहास से भिन्न नहीं होता। अतीतकालिक इतिहास के अस्तित्व की भी यह पहली अपेक्षा है कि इसमें कथ्य कार्य व्यापार इतिहासकार के चित्त को उद्वेलित करता हो। तथा कथित समसामयिक इतिहास के समान वह इतिहास भी सजीव होता है जो यह एक स्पष्ट तथ्य है कि केवल वर्तमानकालिक जीवन में अभिरुचि ही अतीत के अनुसंधान के लिए प्रेरित करती है और इस कारण अतीतकालिक तथ्य जहाँ तक कि यह वर्तमानकालिक जीवन के हितों के साथ संयुक्त होता है, वस्तुतः अतीत के कौतूहलों अथवा स्वार्थों का नहीं अपितु वर्तमानकालिक जीवन के कौतूहलों अथवा स्वार्थों का समाधान प्रस्तुत करता है। प्रत्येक विशुद्ध इतिहास समसामयिक होता है। किसी भी अतीतकालिक घटना व्यापार का इतिहास केवल इसके विवरण के रूप में हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। उदाहरण के लिए पेलोपोनेशियन का युद्ध, मैक्सिको की कला अथवा अरबी दर्शन का विवरण प्रदान करने वाले इतिहास में वर्तमान की क्या अभिरुचि हो सकती है? यदि वर्तमान को इसमें कोई अभिरुचि नहीं है तो इनमें से कोई भी विवरण इतिहास नहीं रह जाता, किंतु इनमें से प्रत्येक उस क्षण इतिहास का स्वरूप धारण कर लेगा जबकि वर्तमान में हम अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसका पुनर्विस्तरण करेंगे। जब हम अतीत के किसी पक्ष विशेष के विषय में जिज्ञासापूर्ण अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं तब यह हमारे व्यक्तित्व के साथ उतने ही घनिष्ठ रूप में जुटा रहता है जितना कि हमारे वर्तमानकालिक अस्तित्व के प्रपंच। वस्तुतः इतिहास जीवन इतिवृत्त होता है। इतिवृत्त मृत इतिहास, इतिहास समसामयिक इतिहास होता है, इतिवृत्त अतीतकालिक इतिहास। क्रोचे के अनुसार वर्तमानकालिक जीवन में अभिरुचि ही किसी को अतीत का अन्वेषण करने को प्रेरित कर सकती है, किंतु इन अभिरुचियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल इसका निर्धारण करती हैं कि इतिहासकार अतीत के किन अंशों को लेता है और किनका त्याग करता है, प्रत्युत वे अतीत के उन अंशों की व्याख्याओं का भी निर्धारण करती है। क्रोचे इन दोनों बातों में विश्वास करता प्रतीत होता है। वह हीगल के इस मत से सहमत दिखाई पड़ता है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में चेतना ही गतिमान तत्व है, किंतु क्रोचे इस सिद्धांत को जो अर्थ प्रदान करता है वह हीगल से सर्वथा भिन्न है। हीगल के अनुसार चेतना इस अर्थ में इतिहास का कारण है, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटनाओं का कारण है। क्रोचे का विश्वास है कि चेतना इस अर्थ में इतिहास का कारण है कि यह ऐतिहासिक विवरणों की रचना में अत्यधिक प्रभ विष्णु घटक होती है। समीक्षक द जैक डब्ल्यू मैलैंड एस्केपेटिज्म एंड हिस्टोरिकल नॉलेज न्यूयॉर्क 1965 पृष्ठ 18-19 से यह बात उद्धृत है। इस प्रकार समसामायिकता इतिहास के किसी एक वर्ग का नहीं अपितु सभी इतिहास का एक आवश्यक लक्षण है। साथ ही इतिहास तथा जीवन का संबंध एकात्मकता का है, दुर्बोध अभिन्नता के अर्थ में नहीं अपितु संश्लेषणात्मक एकात्मकता के अर्थ में, जो शब्दों के विभेद तथा एकता दोनों की उपलक्षित करती है। इस प्रकार प्रमाण विहीन इतिहास की चर्चा सर्वथा निरर्थक होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी ऐसी वस्तु के अस्तित्व की चर्चा जिसके लिए यह भी कहा जाए कि इसके अस्तित्व की अनिवार्य अपेक्षाओं में से कोई एक अविद्यमान है, प्रमाण से असंबद्ध इतिहास परीक्षण सिद्ध नहीं रह जाता। और चूंकि इतिहास की सत्यता इसकी परीक्षण सिद्धता में निहित होती है, अतः इस प्रकार का इतिहास इतिहास के रूप में नहीं प्रतिष्ठित हो सकता। उदाहरणार्थ दार्शनिकों की रचनाओं अथवा उनकी रचनाओं के अंशों के सर्वथा में दर्शन का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है? दूसरी ओर इतिहास में जीवन तथा विचार के बीच स्थित अच्छेद संबंध के सिद्ध होते ही इतिहास की निश्चितता तथा उपयोगिता पर उठाई गई शंकाएँ तत्क्षण अंतर्धान हो जाती है। वह जो हमारी चेतना का वर्तमानकालिक उत्पाद है कभी भी अनिश्चित कैसे हो सकता है? जीवन के अंतरतल से उत्पन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला ज्ञान निरर्थक कैसे हो सकता है? इतिहास शास्त्र जोसे आर्तेगा ई गेसे। मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार वस्तुएं अपने स्वभाव से विशेषित होती हैं, मनुष्य उसी प्रकार इतिहास से मनुष्य ने जो किया है उसके अतिरिक्त अथवा उससे भिन्न उसका कोई स्वभाव नहीं होता। इतिहास - परिवर्तन जीवन का सुव्यवस्थित विज्ञान। यह एक अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है कि इतिहासवाद की इस कारण भर्त्सना की जाती है कि यह हमारे अंदर यह भावना उत्पन्न करता है कि मनुष्य जीवन परिवर्तनशीलता से युक्त है और उसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। मानो जड़ वस्तु, उदाहरण के लिए पत्थर, परिवर्तनशील वस्तु की अपेक्षा अधिक ग्राह्य हो। परिवर्तनशीलता विकास का लक्षण है और मनुष्य इस अर्थ में निरंतर विकासशील है। विकास के संबंध में त्रुटिपूर्ण धारणा इस पूर्व अनिश्चयन में निहित थी कि मनुष्य श्रेष्ठतर स्थिति की दिशा में विकास कर रहा है। इसका निश्चयन बाद में ठोस ऐतिहासिक तर्कबुद्धि द्वारा ही संभव है, किंतु इस बात का पूर्ण अनिश्चय किया जा सकता है कि मानव जीवन का विकासशील स्वभाव है वही ज्ञान जो हमारे लिए मानव जीवन के उतार चढ़ाव को प्रकाशित करता है, उसकी निरंतर विकासशीलता को भी प्रतिष्ठापित करता है। आज का यूरोपीय जो वह 50 वर्ष पूर्व था न केवल उससे भिन्न है, उसका अस्तित्व उन 50 वर्षों को भी सन्निविष्ट करता है। मानव जीवन की अस्थिरता पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, यह हमारे लिए एक विशेष लाभ है। प्रगति तभी संभव है जब आज का हमारा अस्तित्व कल के हमारे अस्तित्व से सर्वथा संयुक्त न हो। किंतु केवल यह पर्याप्त नहीं है, केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि मनुष्य स्वयं को अपने पूर्वकालिक अस्तित्व से मुक्त कर सके और नया स्वरूप धारण करे। प्रगति की यह अपेक्षा है कि नया स्वरूप पुराने के ऊपर उठे और इस उद्देश्य से इसे सुरक्षित रखे। प्रगति करने का अर्थ है अनुभवों का संग्रह करना, सत्यता को संजोना, विकासवादी सिद्धांत की संभावना, जो भी हो, यह कहा जा सकता है कि आज के चीते में तथा 1000 वर्ष पूर्व के चीते में कोई अंतर नहीं है। जब से यह चीता बना तब से वह प्रथम बार अस्तित्व में आया चीता ही रहा है, किंतु मनुष्य जन्म लेते ही स्वयं को एक परिवेश विशेष में अन्य मनुष्यों और उनसे निर्मित समाज के बीच पाता है और इस कारण उसकी अपनी मानवीयता में जो उसमें विकसित होना प्रारंभ करती है अनमानवीयता जुटती जाती है। चीते के समान वह सदैव शून्य से प्रारंभ नहीं करता अपितु एक निश्चित पूर्व अधिगत परिमाण से प्रारंभ करता है जिसमें वह स्वयं अपने विकास का योगदान करता है। मनुष्य सदैव आदि मानव नहीं होता, यथा नियम वह दूसरा मनुष्य, तीसरा मनुष्य इत्यादि होता है। मनुष्य स्वयं अपने ऊपर विचार करे तथा यह जिज्ञासा करे कि वह ऐसा ही क्यों है अन्यथा क्यों नहीं, तो वह देखेगा कि वह ऐसा इसलिए है क्योंकि अंततः समाज सामूहिक मनुष्य जिसमें वह रहता है वह इस प्रकार का है और इसके बदले में समाज की जीवन निधि स्वतः प्रकाशित हो जाएगी। जैसे ही यह ज्ञात होगा कि पूर्ववर्ती अवस्था में यह समाज कैसा था, इसके विश्वास, इसकी अनुभूतियां अथवा इसके मूल्य क्या थे। इतिहास एक शास्त्र है तथा एक अपरिवर्तनीय श्रृंखला में संबद्ध मानव अनुभवों का शास्त्र, अतः इतिहास में सभी कुछ स्पष्ट हुए बिना कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। हम तर्क बुद्धि प्रधान यूरोपियों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि यह न समझ लिया जाए कि ईसाई होने का क्या अर्थ था और ईसाई मत के इस तथ्य को समझने के लिए अस्टोइक होने के अर्थ का भी ज्ञान आवश्यक है और इस प्रकार यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है। इतिहास मेरे जीवन का सुव्यवस्थित विज्ञान है और इस कारण यह वर्तमान का विज्ञान है। अतीत कहीं पर नहीं स्थित है, वह मेरे अंदर ही है। अतीत मैं हूँ, मैं से अर्थ मेरा जीवन है। इतिहास की अवधारणा आरजी कालिंगवुड। इतिहास की अवधारणा वस्तुतः कालिंगवुड की पुस्तक का नाम है। उसने पुस्तक की योजना पहले ही बना ली थी किंतु इसका प्रकाशन 1945 उसकी मृत्यु के पश्चात ही संभव हो सका। कालिंगवुड के इतिहास दर्शन की प्रायः क्रोचे के इतिहास दर्शन से तुलना की जाती है। दोनों में काफ़ी समानताएं मिलती हैं और कुछ लोगों ने कालिंगवुड को क्रोचे का शिष्य तक बताया है। दोनों व्यक्तियों के इतिहास विकास में पर्याप्त सदृश्यता है। दोनों में ही अपनी कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचियों के कारण उस समय पढ़ाए जाने वाले दर्शन में असंतोष उत्पन्न हुआ। दोनों ही हिगल का स्वयं अध्ययन कर इतिहास में मौलिक लेखन को तत्पर हुए एवं दोनों ने ही एक प्रकार के आदर्शवाद तथा दर्शन एवं इतिहास की अभिन्नता का प्रतिपादन किया। किंतु जैसा कि नॉक्स ने कालिंगवुड की पुस्तक के अपने प्राकथन में लिखा है, यद्यपि कालिंगवुड ने क्रोचे से सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में बहुत कुछ एवं इतिहास के क्षेत्र में कुछ सीखा था, किंतु उसके निष्कर्ष प्रमुखतः स्वतंत्र रूपेण अधिगत थे एवं क्रोचे की अपेक्षा वे अधिक विस्तार पूर्ण तथा समीक्षात्मक ढंग से प्रतिपादित किए गए हैं। स्वयं कालिंगवुड का कहना था कि उसका प्रिय दार्शनिक प्लेटो था एवं बिको ने उसे किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावित किया था। यद्यपि अपने अंतिम दिनों में उसने क्रोचे के सदृश आदर्शवाद का प्रतिपादन किया, अपने प्रारंभिक दिनों में उसने क्रोचे की गंभीर आलोचना की थी और अपने लिए स्वतंत्र दर्शन की रचना में तत्पर हुआ था। कालिंगवुड के मतानुसार इतिहास दर्शन न तो एकांती रूपेण अतीत से और न ही एकांती रूपेण इतिहासकार के चिंतन से संबद्ध है, अपितु यह अपने पारस्परिक संबंधों में दोनों से ही संबद्ध है। जिस अतीत का इतिहासकार अध्ययन करता है वह मूर्त अतीत नहीं है, अपितु ऐसा अतीत है जो कुछ अर्थों में वर्तमान में विद्यमान होता है। किंतु यदि इतिहासकार अतीतकालिक घटना के पीछे स्थित विचार को नहीं समझ सकता तो वह अतीतकालिक घटना उसके लिए मृत अर्थात निरर्थक होती है, और इस प्रकार सभी इतिहास विचार का इतिहास होता है। कालिंगवुड का मत इस पर बल देता प्रतीत होता है कि इतिहासकार को अपने तथ्य विशुद्ध तथ्य के रूप में नहीं प्राप्त होते, अपितु स्वयं तथ्यों का प्रतिष्ठापन इतिहासकार द्वारा होता है। इतिहासकार इतिहास में व्याख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रकार ऐतिहासिक तथा व्युत्पादित तथ्य होते हैं। अतीत को वर्तमान की दृष्टि से भी से ही देखा जा सकता है। इतिहास का प्रयोजन, इतिहास का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है। यह सामान्यतया महत्वपूर्ण माना जाता है कि मनुष्य स्वयं को जाने और इससे जानने का अर्थ केवल अपनी अन्य व्यक्तियों से पृथक व्यक्तिगत विशिष्टताओं को जानना नहीं, अपितु मनुष्य के रूप में अपने स्वभाव को जानना है। अपने को जानने का अर्थ है कि हम क्या कर सकते हैं, और चूंकि बिना प्रयास किए कोई भी यह नहीं बता सकता कि वह क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है, इस विषय में एकमात्र सूत्र यह है कि उसने क्या किया है। इतिहास का मूल उससे प्राप्त इस शिक्षा में निहित है कि मनुष्य ने क्या किया है, और इस प्रकार इसमें कि मनुष्य क्या है, इतिहास डैश विचार का इतिहास है। प्राकृतिक प्रक्रिया को केवल घटनाओं के अनुक्रम के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। इसके विपरीत ऐतिहासिक प्रक्रिया केवल घटनाओं की प्रक्रिया नहीं होती, यह कार्यों की प्रक्रिया होती है जिनका विचार प्रक्रियाओं से निर्मित एक अभियंतर पक्ष होता है, और इतिहास इन विचार प्रक्रियाओं को ढूंढता है। सभी इतिहास विचार का इतिहास होता है। इतिहासकार अतीत का पुनर्विधायन करता है, किंतु यह पुनर्विधायन उसके अपने ज्ञान के संदर्भ में होता है, और इस कारण उसका पुनर्विधायन करते हुए वह इसकी समीक्षा करता है एवं इसके मूल के प्रति अपना निर्णय बताता है और इसमें दिखाई पड़ने वाली त्रुटियों का शोधन भी करता है। ऐतिहासिक ज्ञान इसका ज्ञान है कि मन में ने अतीत में क्या किया है, और इसके साथ ही इस अतीत को फिर से क्रियान्वित करना है, अर्थात वर्तमान में अतीत का सात्यत है। इस प्रकार इसका विषय कोई बाह्य स्थित वस्तु नहीं है, अपितु यह विचार का एक कार्य व्यापार है। इतिहासकार के लिए अध्येय कार्य व्यापार केवल दर्शनीय वस्तु नहीं होते, अपितु वे अनुभव होते हैं जिनकी वह अपने मन में अनुभूति करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक गवेषणा इतिहासकार को उसके अपने मन की शक्तियों से परिचित कराती है। ऐतिहासिक ज्ञान केवल सुदूर अतीत से ही संबद्ध नहीं होता। जिस प्रकार ऐतिहासिक चिंतन द्वारा हम किसी अतीत कालिक व्यक्तित्व के विषय में पुनर्चिंतन करते हैं और इस प्रकार उसे जानते हैं, उसी प्रकार किसी अपने मित्र को यह भी आवश्यक नहीं है कि इतिहासकार का विषय उससे भिन्न ही हो। ऐतिहासिक चिंतन के द्वारा ही हम अपने अतीत को जानते हैं। इस प्रकार मन का सभी ज्ञान स्वरूपतः ऐतिहासिक होता है। इस प्रकार सिद्धांततः समस्त प्रत्यक्ष जगत इतिहासकार के लिए साक्ष्य स्वरूप हैं। हमारे अंदर ऐतिहासिक ज्ञान जितना ही अधिक है, किसी प्रदत्त साक्ष्य से हम उतना ही अधिक सीख सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने पर ही कोई साक्ष्य बनता है। ऐतिहासिक चिंतन कल्पना का वह कार्य व्यापार है जिसके द्वारा हम इस साध्य भावना को विस्तृत प्रसंग प्रदान करने का प्रयास करते हैं और यह हम वर्तमान का इसके अपने अतीत के साक्ष्य के रूप में उपयोग करते हुए करते हैं। सिद्धांत में ऐसे किसी कार्य का उद्देश्य प्रत्यक्ष वर्तमान के साक्ष्य के आधार पर संपूर्ण अतीत को जानना होगा, किंतु व्यवहार से यह लक्ष्य कभी भी नहीं उपलब्ध हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष वर्तमान को कभी भी इसकी समष्टि में नहीं देखा जा सकता और न ही अतीत की अनंत प्रक्रिया को इसकी संपूर्णता में आंका जा सकता है। किंतु सिद्धांततः इस आदर्श लक्ष्य तथा व्यवहारतः प्राप्य वस्तु का यह विभेद मनुष्य की स्थिति में ही है, यह ऐतिहासिक चिंतन की विशिष्टता नहीं है। अतीत के विवरण की भिन्न व्याख्याएं। इतिहास में कोई भी उपलब्धि अंतिम नहीं होती, किसी भी प्रदत्त समस्या के प्रति उपलब्ध साक्ष्य ऐतिहासिक विधा में परिवर्तन के साथ तथा इतिहासकारों की क्षमता में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के कारण प्रत्येक पीढ़ी को अपने इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए। प्रत्येक नए इतिहासकार को चाहिए कि वह पुराने प्रश्नों को केवल नए उत्तर प्रदान करके संतुष्ट न होकर उन प्रश्नों का पुनर्निरीक्षण करे। केवल एक इतिहासकार ही किसी एक प्रश्न पर लंबे समय तक विचार करते हुए जब किसी पुराने प्रश्न को पुनः उठाता है तो पाता है कि प्रश्न बदल गया है। इतिहासकार को ऐतिहासिक सत्य का मानदंड कहीं बाहर से नहीं मिलता, यह मानदंड स्वयं इतिहास की अवधारणा होती है। अतीत के एक काल्पनिक चित्र की अवधारणा, यह एक ऐसी अवधारणा होती है जिसके ठीक अनुरूप अनुभव का कोई भी तथ्य नहीं होता। कोई भी इतिहासकार कितने ही दीर्घकाल तक तथा लगन से कार्य क्यों न करे, वह यह कभी भी नहीं कह सकता कि इस विषय पर उसका कार्य अंतिम है। वह कभी भी यह नहीं कह सकता कि अतीत का उसका चित्रण किसी भी बिंदु पर इसे क्या होना चाहिए अथवा उसकी इस भावना के उपयुक्त है या अथवा नहीं, किंतु उसकी कृति के निष्कर्ष कितने भी आंशिक एवं त्रुटिपूर्ण हो, इसके पीछे काम कर रही भावना स्पष्ट, तर्कशील एवं सार्वत्रिक होती है। इतिहास विशिष्ट प्रकार विज्ञान डैश। इतिहास विज्ञान है, किंतु यह एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो ऐसी घटनाओं का अध्ययन करता है जो हमें प्रत्यक्षतः नहीं प्राप्य हैं, अपितु जिन्हें प्रत्यक्षतः प्राप्य वस्तुओं के आधार पर जिन्हें इतिहासकार साक्ष्य कहता है अनुमानात्मक ढंग से जाना जाता है। फ्रेंसिस बेकन ने अपने एक अविस्मरणीय वाक्य में यह कहा है कि भौतिक वैज्ञानिक को प्रकृति से प्रश्न करना चाहिए। इससे उसका अभिप्राय यह था कि भौतिक वैज्ञानिक का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण केवल आदरपूर्ण सावधानी का नहीं होना चाहिए, एक ओर तो उसे यह निश्चित करना चाहिए कि वह क्या जानना चाहता है तथा वह इसे एक प्रश्न का जामा पहनावे, एवं दूसरे प्रश्न के चरण के रूप में उसे चाहिए कि वह ऐसे उपादानों का प्रयोग करे जिससे प्रकृति उसके प्रश्नों का उत्तर देने को विवश हो जाए। यही विधा सही ऐतिहासिक विधा भी है। सामान्यतया इतिहास को पूर्व प्राप्त सामग्री का विवरण समझा जाता है। अवैज्ञानिक इतिहासकार का अपने साक्ष्यों के प्रति दृष्टिकोण केवल आदरपूर्ण सावधानी का होता है। वह केवल यह सुनने की प्रतीक्षा करता है जो ये साक्ष्य उसे अपने ढंग से और अपने समय के संदर्भ में बताना चाहते हैं। निसंदेह वैज्ञानिक इतिहासकार भी उन्हीं पुस्तकों हेरोडोटस, थियुसाइडाइडीज, लिबी, टेसिटस इत्यादि का अध्ययन करता है, किंतु वह इनका अध्ययन सर्वथा भिन्न भावना से करता है। अवैज्ञानिक इतिहासकार की केवल ग्रहणकारी भावना होती है, जबकि वैज्ञानिक इतिहासकार इनका अध्ययन अपने मन में एक प्रश्न रखते हुए करता है। वह यह निश्चित करके इस अध्ययन में प्रवृत्त होता है कि इनसे वह क्या जानना चाहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैज्ञानिक इतिहास में कोई पूर्व स्थित अभिकथन नहीं होता। वैज्ञानिक इतिहासकार इन अभिकथनों को अभिकथनों के रूप में नहीं अपितु साक्ष्य के रूप में लेता है। यह उन्हें उन तथ्यों जिनका कि यह विवरण होने का दावा करते हैं कि मिथ्या अथवा सत्य के विवरण के रूप में न लेकर अन्य तथ्यों के रूप में लेता है, जो यदि वह इनके प्रति सही प्रश्न पूछना जानता है उन तथ्यों के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं। तब चिंतन कार्य केवल व्यक्तिनिष्ठ नहीं अपितु वस्तुनिष्ठ भी है। यह केवल चिंतन नहीं है अपितु एक ऐसी वस्तु है जिस पर चिंतन किया जा सकता है, किंतु चूंकि यह कभी भी केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है अतः इस पर एक निश्चित प्रकार से विचार करने की अपेक्षा होती है, ऐसा प्रकार जो केवल इसके लिए उपयुक्त है। जिस अर्थ में वस्तु निष्ठात्मक ढंग विषय निष्ठात्मक का सर्वथा परिहार करता है, उस अर्थ में इसका अध्ययन कभी भी वस्तु निष्ठात्मक ढंग से नहीं किया जा सकता। इसका अध्ययन उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में वस्तुतः इसका अस्तित्व है, अर्थात एक कार्य के रूप में। यह अध्ययन केवल अनुभव अथवा चेतना नहीं है, केवल आत्मचेतना भी नहीं, यह आत्मज्ञान होता है। ऐतिहासिक ज्ञान का विषय इस प्रकार विचार होता है, विचार की गई वस्तुएं नहीं अपितु चिंतन का कर्म। किसी भी व्यक्ति की प्रगति की अवधारणा दो ऐतिहासिक कालों अथवा जीवन मार्गों की तुलना करने पर स्पष्ट होती है। यहाँ यह अपेक्षित है कि वह इन दोनों तुलनीय वस्तुओं को ऐतिहासिक ढंग से समझे, अर्थात उसमें उनके अनुभवों को अपने लिए पुनर्निर्मित करने की सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण तथा सूक्ष्म दृष्टि हो। उसे तथा उसके पाठकों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि न तो उसके मन में कोई ऐसा कलंक है और न ही उसकी विधा में कोई ऐसी त्रुटि है जिससे वह एक पक्ष एक की अपेक्षा अन्य के अनुभवों में उतना प्रवेश पा रहा हो। इस अपेक्षा की पूर्ति होने पर वह यह प्रश्न कर सकता है कि प्रथम से द्वितीय में परिवर्तन प्रगति है अथवा नहीं, किंतु इस प्रश्न से वह क्या पूछ रहा है। इस प्रश्न का केवल एक यथार्थ अर्थ हो सकता है, यदि कोई विचार प्रथम अवस्था में तत्कालीन कतिपय समस्याओं का समाधान करता है और यह करते हुए कुछ ऐसी समस्याओं से उलझता है जिनसे वह पराजित हो जाता है, और यदि दूसरा प्रथम अवस्था में प्राप्त समाधानों पर नियंत्रण खोए बिना इन नई समस्याओं को सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो निश्चित रूप से विकास मानना होगा। किसी अन्य अर्थ में विकास नहीं माना जा सकता। विकास केवल एक रूप में होता है, किसी भी एक अवस्था में पूर्ववर्ती अवस्था की उपलब्धियों को मन में बनाए रखकर। दो अवस्थाएं केवल अनुक्रम से परस्पर संबद्ध नहीं होती अपितु सातत्य एक विशेष प्रकार के सातत्य द्वारा होती है। यदि आइंस्टीन न्यूटन पर विकास प्रदर्शित करता है तो वह ऐसा न्यूटन के विचार को जानते हुए तथा इसे अपने विचार में सुरक्षित करते हुए करता है, इस अर्थ में कि उसे यह ज्ञात है कि न्यूटन की समस्याएं क्या थी और उसने कैसे उसका समाधान किया। वह इन समाधानों के सत्य को उन त्रुटियों से पृथक करता है जिन्होंने न्यूटन को और आगे बढ़ने से रोका था, और इस प्रकार इन पृथककृत समाधानों को अपने सिद्धांत में समाविष्ट करता है। संभव है उसे यह न्यूटन का अध्ययन किए बिना किया हो, किंतु उसने किसी से न्यूटन के सिद्धांत को अवश्य प्राप्त किया होगा। इस प्रकार के संदर्भ में न्यूटन एक मनुष्य के रूप में नहीं अपितु वैज्ञानिक इतिहास के किसी युग विशेष में प्रभावी सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित होता है। इस सिद्धांत को विज्ञान के इतिहास में एक तथ्य के रूप में जानते हुए ही आइंस्टीन कोई विकास प्रदर्शित कर सकता है। न्यूटन इस प्रकार आइंस्टीन में उसी प्रकार निवास कर रहा है जिस प्रकार कोई अतीत काल इतिहासकार के मस्तिष्क में निवास करता है। यह किसी बात यह बात किसी विकास पर लागू होती है। यदि हम पूंजीवाद तथा युद्ध की समाप्ति चाहते हैं तथा ऐसा करने में केवल इनका नाश नहीं अपितु इनके स्थान पर कुछ श्रेष्ठतर वस्तु पाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम इनको ठीक से समझें, यह देखें कि वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका हमारी आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समाधान प्रस्तुत कर रही है तथा कैसे इनका समाधान उन अन्य समस्याओं से संबद्ध है जिनका समाधान यह नहीं कर पा रही है। यह संभव है कि जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं उसके प्रति घृणा उसके सम्यक अवबोध में बाधक बने तथा हम उसे इतना अधिक चाहते हों कि बिना इस प्रकार की घृणा का आश्रय लिए इसका विनाश संभव न हो। किंतु ऐसा है तो एक बार फिर जैसा कि अतीत में प्रायः हो चुका है परिवर्तन होगा, विकास नहीं। अपने अज्ञान के फल से हमें प्रकृति का कोई भी उदार नियम नहीं बचा सकता। कालिंगवुड के इतिहास स्वरूप की आलोचना। ऊपर से के विवरण से स्पष्ट है कि कालिंगवुड द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवादियों का विरोध इतिहास के विशिष्ट एवं विलक्षण घटनाओं से संबद्ध होने पर उतना आधारित है जितना इस तथ्य विशेष पर कि इतिहास प्राकृतिक घटनाओं का नहीं अपितु मानव कार्य व्यापारों की व्याख्या प्रदान करने का उपक्रम करता है एवं मनुष्य अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों को व्यवस्थित करने में कुछ सीमा तक स्वतंत्र होते हैं। इन दो भिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन भिन्न प्रकार से होता है और कालिंगवुड ने यह विभेद स्पष्ट किया है। प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या बाहर से की जाती है जबकि ऐतिहासिक घटनाओं का अभ्यांतर पक्ष भी होता है जिसकी अभिव्यक्ति उसके कार्यों में होती है। उसके अनुसार कर्ता के प्रयोजनों को जानने से ये दोनों बातें जानी जाती हैं वह क्या कर रहा है और साथ ही ऐसा वह क्यों कर रहा है। कालिंगवुड के मत के प्रसंग में कुछ विशेष आपत्ति उठाई गई है। इतिहास के निर्माण में इतिहासकार की भूमिका पर उसके बल को यदि इसके अंतिम तार्किक बिंदु तक खींचा जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता या निर्वैयक्तिकता नामक कोई वस्तु नहीं हो सकती जो जिस प्रकार से चाहे इतिहास लिख सकता है, जिसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ होगा कि इतिहास सर्वथा निरर्थक है। दूसरे यदि जैसा कि कालिंगवुड ने कहा है इतिहासकार अतीत का अध्ययन वर्तमान की दृष्टि से करता है तथा अतीत की समस्याओं को वर्तमान कालिक समस्याओं के हल के लिए करता है, तो सही व्याख्या का मापदंड केवल यह रह जाएगा कि वर्तमान के लिए उनकी उपयोगिता है अथवा नहीं। किंतु इससे इतिहास प्रचारवाद में रूपांतरित होकर रह जाएगा। कालिंगवुड के मत के विरोध में एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि ऐतिहासिक कर्ताओं के सभी कार्यों में विचार पक्ष निहित हो, यह आवश्यक नहीं है। साथ ही तर्कशील व्याख्याएं केवल व्यक्तियों के कार्यों के प्रति व्यवहृत हो सकती है, राष्ट्रों संस्थाओं परिस्थितियों इत्यादि पर नहीं, जिनकी की इतिहासकार प्रायः चर्चा करता रहता है। कालिंगवुड की मान्यता के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक कार्यकर्ता के विवेक से निरपवाद रूपेण संबद्ध होता है, किंतु यह निश्चित कर सकना कठिन है। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रत्यक्षवादी विचारक हिम्पेल ने तर्क किया है, इस व्याख्या में एक अन्य पूर्ण धारणा को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाएगा कि कार्य करते समय कर्ता विशेष विवेकपूर्वक मानसिक स्थिति में था। समीक्षक प्रत्यक्षवादियों तथा कालिंगवुड के समर्थकों के बीच संभावित तर्क वितर्क के लिए ड्रे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री प्रेंटिस हाल 1964 पृष्ठ संख्या 10 से 15 में यह आलोचना का विवरण उल्लेख मिलता है।